السلام علیکم، یہ پارٹ 15 ہے، کتاب بلیک شارک، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 15۔ اگلے 15 منٹ کے بعد جب اس نے قبیلے سے باہر جانے والے سیاہ فاموں کو واپس قبیلے کی طرف آتے دیکھا تو اس نے خود کو سمیٹتے ہوئے جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ سیاہ فام گرد کے درختوں اور جھاڑیوں کو دیکھتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ انہیں اس طرف درخت اور جھاڑیوں کو چیک کرتے دیکھ کر میجر پرمود کے چہرے پر ایک قدر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ چند سیاہ فام درختوں اور جھاڑیوں کو چیک کرتے ہوئے اسی طرف بڑے چالے آ رہے تھے جہاں میجر پرمود موجود تھا۔ سیاہ فام مشین گنوں سے جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے اور درختوں کو غور سے چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور جو آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ میجر پرمود کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی میزائل گن پر گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سیاہ فام جو بے حد لمبا اور چوڑا طاقتور جسم کا مالک تھا تیزی سے گھنی جھاڑیوں میں کرالنگ کرتے ہوئے سامنے موجود خبردار تاروں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے جہاں بے شمار سیاہ فام مسلح افراد کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ان مسلح سیاہ فام افراد کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ وہ خبردار تاروں کی دوسری طرف ایک سمت سے دوسری سمت آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ کسی ملک کے سرحدی محافظ ہوں اور اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت پر مامور ہوں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے ڈبنگرا کو ایک مخصوص جگہ بلا لیا تھا اور پھر وہ سب ڈبنگرا کے ساتھ اسی ڈبل کیبن میں دوسرے شہر کی طرح روانہ ہو گئے تھے جہاں سے وہ بلیک سٹی میں داخل ہو سکتے تھے۔ ڈبنگرا انہیں دوسرے شہر کے قریب سے گزرتا ہوا ایک چھوٹے سے جنگل میں لے آیا۔ جنگل سے گزر کر وہ ایک میدانی علاقے میں آئے جس کے آگے ایک اور جنگل تھا۔ ڈبنگرا نے انہیں بتایا کہ اس جنگل کی دوسری طرف بلیک سٹی ہے جس کی حفاظت کے لیے کرمنل گروپ نے شہر کو چاروں طرف حفاظت میں رکھنے کے لیے باڑہ لگا رکھی ہے اور باڑہ کی دوسری طرف کرائم گروپ کے بہت سے مسلح افراد موجود ہوتے ہیں جو اس شہر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس شہر میں وہی کرمنلز آ سکتے ہیں جو اس شہر سے متعلق ہوں یا پھر انہیں بلیک سٹی کی جانب سے شہر میں داخلے کا مخصوص کارڈ ملا ہوا ہو۔ ڈبنگر نے عمران کو بتایا تھا کہ اس نے بلیک سٹی میں داخل ہونے کے لیے اسی شہر کے اسپیشل کارڈ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اسے کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ عمران نے بھی اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ اور اس کے ساتھی کیسے افریقی ملٹری انٹیلیجنس کے قابو میں آئے تھے اور وہ کس طرح سے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے ریڈ میزائلوں کے حملے سے بچ نکلے تھے۔ ڈبنگر کو بھی اس بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ افریقی ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پر اس قدر ڈھلے سے کون حملہ کر سکتا ہے۔ پھر جب عمران نے اسے اپنا تجزیہ بتایا کہ یہ کام سوائے بلیک پائرٹ کے اور کوئی نہیں کر سکتا تو ڈبنگر بھی عمران کے خیالات سے متفق ہو گیا۔ ڈبنگر نے انہیں ویگن جنگل کے باہر ہی چھوڑنے کا کہا تھا اور پھر وہ اس کے ساتھ پیدل ہی جنگل کی طرف چل پڑے تھے اور جنگل کے دوسری طرف آتے ہی انہیں دور سے بلیک سٹی کا ریڈ زون دکھائی دیا تو وہ سب وہیں دبک گئے اور پھر ان سب نے اپنا اسلحہ سنبھالا اور بلیک سٹی میں داخل ہونے کے لیے اس طرح درختوں کے پیچھے چھپتے ہوئے اور جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے باڑہ کی طرف جانب بڑھنا شروع ہو گئے۔ باڑہ کی دوسری طرف 10 مسلح افراد موجود تھے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور جنگل سے آنے والے راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جس جگہ سیاہ فام موجود تھے ان سے کافی فاصلے پر گھنے درخت اور جھاڑیاں موجود تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی اس لیے احتیاط کے ساتھ باڑہ کے نزدیک موجود سیاہ فاموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اگر وہ اچانک ان پر حملہ کرے تو کہیں دوسری طرف موجود درختوں اور جھاڑیوں میں سے مزید مسلح افراد نہ نکل آئیں۔ جب عمران اور اس کے ساتھی باڑہ کے کافی نزدیک آ گئے تو इमरान ने दबंगर और अपने साथियों को फौरी तौर पर दाएं बाएं जाने का इशारा कर दिया ताकि वो बाड़ा की दूसरी तरफ मौजूद तमाम मुसल्ह अफराद को एक साथ निशाना बना सकें। इमरान के कहने पर उन सब ने अपने मशीन पिस्टल पर साइलेंसर फिट कर लिए थे। इमरान का इशारा मिलते ही वो सब तेज़ी से दाएं बाएं रिंगते चले गए। इमरान झाड़ियों से सर उठाए गौर से सिया फामों की जानी देख रहा था। वो चाहता था कि इसके साथी अपने मखसूस मकामात पर पहुंच जाएं और सिया फाम इन्हें ना देख सकें। अगर इन सिया फामों में से कोई इसके साथी की तरफ मुतवज्जा हो जाता तो इमरान साइलेंसर लगे मिशन पिस्टल से फौरन इसे निशाना बना लेता। कुछ ही देर में उसके साथी ऐसी जगहों पर पहुंच गए जहां से वो बाड़ा की दूसरी तरफ मौजूद मुसल्ला सिया फामों को आसानी से निशाना बना सकते थे। इमरान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर उसने हलक से उल्लू की तेज़ आवाज़ निकाली। इस आवाज़ को सुनकर बाड़ा की दूसरी तरफ मौजूदा मुसल्ला सिया फाम बुरी तरह से चौंक पड़े। वो तेज़ी से मुड़कर बाड़ा की तरफ आए। उन्हें आगे आता देखकर इमरान और उसके साथियों के मिशन पिस्टल से ठक ठक की मखसूस आवाज़ें निकली और 10 के 10 मुसल्ला अफराद उछल उछल कर गिरते चले गए। इमरान और उसके साथियों ने सिया फामों के सरों और दिल के मकाम पर गोलियां चलाई थी ताकि उनके मुंह से चीखें ना निकल सकें और ऐसा ही हुआ था। सिया फाम बगैर चीखे उछल उछल कर गिर पड़े और वहीं साकत हो गए। इन सबको हलाक होता देखकर इमरान और उसके साथी उसी तरह झाड़ियों में दुबके रहे। उनकी नज़रें सामने मौजूद और झाड़ियों दरख्तों और झाड़ियों पर जमी हुई थी। जिस तरह से सिया फाम उछल उछल कर गिरे थे उन्हें दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से आसानी से देखा जा सकता था और अगर वहाँ कोई मौजूद होता तो वो लाजमी तौर पर अपने साथियों को इस तरह गिरते देखकर चौंक पड़ता और फौरी तौर पर भागता हुआ वहाँ आ जाता। लेकिन काफ़ी देर गुजर गई जब झाड़ियों और दरख्तों की तरफ से कोई सामने ना आया तो इमरान इत्मीनान भरे अंदाज में उठ खड़ा हुआ। आ जाओ सब, लगता है यहाँ इन 10 अफराद के सिवा कोई नहीं है, इमरान ने कहा तो उसके साथी इत्मीनान भरे अंदाज में उठकर खड़े हो गए। ब्लैक सिटी में दाखिल होने के लिए गैर मुतल्लिक अफराद ऐसे ही जंगलों से गुजरने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ सख्त पैरा होता है। इसलिए यहाँ 10 मुसल्ह अफराद मौजूद थे। अब हम आसानी से दूसरी तरफ जा सकते हैं, सिया फाम अफ्रीकी एजेंट दबंगड़ ने कहा। शहर इस इलाके से कितने फासले पर है, इमरान ने पूछा। जंगल की दूसरी तरफ एक पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद हमें 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, फिर हम इस शहर में दाखिल हो जाएंगे, दबंगड़ ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि ये सिया फाम यहाँ पैदल चलकर नहीं आए होंगे, इमरान ने कहा। जी हाँ, इनकी गाड़ियाँ दरख्तों और झाड़ियों के पीछे होंगी, दबंगड़ ने इस बात में सर हिला कर जवाब दिया। तो फिर आओ, हम इनकी गाड़ियों में ही चलते हैं, इमरान ने कहा। और फिर वो सब बाड़ा को उठाकर उनके दरमियान से रास्ता बनाते हुए दूसरी तरफ आ गए। मिशन पिस्टल दस्तूर उनके हाथों में थे ताकि गैर मुतवक्का हमले की सूरत में वो न सिर्फ अपना बचाव कर सकें बल्कि हमला करने वालों पर बरवक्त जवाबी कार्रवाई भी कर सकें। लेकिन वाकई इन झाड़ियों और दरख्तों में कोई नहीं था। दरख्तों की दूसरी तरफ दो बड़ी जीवें ज़रूर मौजूद थीं। इन जीवों को देखकर इमरान की आंखें चमक उठी। उसने जीवों का जायज़ा लिया। जीवों के फेवल टैंक भरे हुए थे। क्या ख्याल है दोनों जीवें ले चलें, दबंगड़ ने कहा। क्या ज़रूरत है, जब हम सब एक ही जीप में समा सकते हैं तो दूसरी जीप ले जाने की क्या ज़रूरत है, इमरान ने कहा। तो दबंगड़ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब एक जीप में बैठते चले गए। जीप की ड्राइविंग सीट पर दबंगड़ बैठ गया था। जबकि साइड सीट पर इमरान और बाकी सब पिछली सीटों पर बैठ जबकि साइड सीट पर इमरान और बाकी सब पिछली सीटों पर बैठ गए। इन सबके बैठते ही दबंगर ने जीप दरख्तों और झाड़ियों से निकाल कर जंगल की मुखालिफ सिंह में दौड़ानी शुरू कर दी। जंगल में कई छोटे बड़े रास्ते बने हुए थे जहां आसानी से गाड़ियां लाई जा सकती थी। कुछ ही देर में जीप जंगल से निकलकर एक पहाड़ी इलाके में आ गई। पहाड़ी इलाके में कभी कच्ची पक्की सड़कें बनी हुई थी। दबंगर इन रास्तों पर मखसूस अंदाज में जीप दौड़ा रहा था। दो तीन पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए वो एक पुख्ता सड़क पर पहुंच गए और पुख्ता सड़क पर आते ही दबंगर ने जीप फुल स्पीड से दौड़ानी शुरू कर दी। दबंगर उनके लिए मखसूस सामान और मेकअप किट्स भी लाया था। ब्लैक सिटी की तरफ से आते ही उन्होंने जंगल में दाखिल होते ही मास्टर गैंग का मेकअप ख़त्म कर लिया था। उन्होंने नए मेकअप भी सिया फार्मों के से ही किए थे क्योंकि ब्लैक सिटी में जो भी कार्ड होल्डर क्रिमिनल आता था उसके लिए भी ज़रूरी होता था कि वो सिया फार्म हो। ब्लैक सिटी में किसी भी सफ़ेद फार्म को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी और अगर कोई सफ़ेद फार्म ब्लैक सिटी में दाखिल हो जाता और किसी सिया फार्म की नज़रों में आ जाता तो सिया फार्म उसे देखते ही गोली मार देता। इमरान और उसके साथियों को ब्लैक सिटी में चूंकि मुख्तलिफ इलाकों की चेकिंग करनी थी इसलिए वो इसी शहर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिया फार्मों के मेकअप कर लिए थे जो मास्टर गैंग के अफराद से कतई मुख्तलिफ थे। जी पहाड़ी इलाकों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई शहर की जानिब उड़ी जा रही थी। इमरान और उसके साथी इत्मीनान भरे अंदाज में बैठे हुए थे। अचानक जीप में लगा हुआ ट्रांसमीटर जाग उठा। ट्रांसमीटर से युक्लत तेज सीटी की आवाज़ निकली तो न सिर्फ दबंगर बल्कि इमरान और उसके साथी भी चौंक पड़े। ओ लगता है कोई सरहदी मुहाफिजों को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, दबंगर ने कहा। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, दबंगर ने कहा। इमरान ने पूछा, सरहदी हिस्सों पर कई क्राइम ग्रुप के मुसल्लह अफराद होते हैं। अब मालूम नहीं कि हमने जिन अफराद को हलाक किया है उनका किस ग्रुप से ताल्लुक था और वो यहाँ कब से तैनात थे, दबंगर ने जवाब दिया। हमें ये कॉल रिसीव कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम कॉल रिसीव ना करें और कॉल करने वालों को शक हो जाए और वो यहाँ की चेकिंग के लिए मजीद मुसल्लह अफराद को भेज दे, जूलिया ने कहा। लेकिन हम इनसे बात क्या करेंगे, इमरान साहब ने तो बाड़ा के पास मौजूद किसी शख्स की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। अगर इनके दरमियान कोई मखसूस कार्ड का तबादला हुआ तो, इमरान साहब क्या जवाब देंगे, सफदर ने कहा। जो भी होगा देखा जाएगा, इमरान साहब को वाकई कॉल रिसीव कर लेनी चाहिए, क्यों इमरान साहब, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए ये कॉल रिसीव नहीं करूँगा, सफदर कह रहा है। अगर कॉल करने वालों ने कार्ड में बात करने की कोशिश की तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने कहा तो वो सब सर हिला कर रह गए। चंद लम्हों तक ट्रांसमीटर की सीटी बजती रही, फिर ट्रांसमीटर खामोश हो गया। जैसे ही ट्रांसमीटर ऑफ हुआ इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया ताकि इस पर दोबारा कॉल ना की जा सके। अब हम शहर से कितनी दूर हैं, इमरान ने पूछा। बस 2 किलोमीटर और, इसके बाद हम शहर में दाखिल हो जाएंगे, दबंगर ने जवाब दिया। क्या इस तरफ कोई चेक पोस्ट तो नहीं है जहां आने वालों की चेकिंग की जाती हो, इमरान ने पूछा। इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं इस शहर में पहले भी कई बार आया हूं लेकिन इन रास्तों पर मेरा बहुत कम सफ़र हुआ है। जो मुख्तलिफ अतरस से शहर में आते हैं, दबंगर ने जवाब दिया तो इमरान ने अजवात में सर हिला दिया। सड़क दूर तक मुसलसल पहाड़ियों के दरमियान बल खाती हुई जा रही थी। सड़क की एक जानब पहाड़ियां थी जबकि दूसरी जानब ढलवानी हिस्सा था। दबंगर ने जवाब दिया तो इमरान ने अजवात में सर हिला दिया। सड़क दूर तक मुसलसल पहाड़ियों के दरमियान दल खाती हुई जा रही थी। सड़क की एक जानी पहाड़ियाँ थीं जबकि दूसरी जानी ढलवानी हिस्सा था। इस सड़क से कहीं दूसरी तरफ जाने वाला कोई रास्ता नहीं था। सामने एक पहाड़ी मुड़ते ही इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर बाकायदा सिया फामों ने एक चेक पोस्ट बना रखी थी जहां कई सिया फाम मुसल्ला अफराद दिखाई दे रहे थे। इन सिया फामों ने सड़क पर ड्रम रखे हुए थे जिनसे सड़क तकरीबन ब्लॉक हो गई थी। लो कर लो बात, सर मुंडवाया नहीं और ओले बरसने के लिए तैयार हैं। अब ये ओले हमारे सरों पर बरसेंगे तो हमारे घुंघरियाले बाल वाले सरों का क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है, इमरान ने चेक पोस्ट और ब्लॉक सड़क देखकर एक तवील सांस लेते हुए कहा। चेक पोस्ट देखकर डबंगर के चेहरे पर भी कबीदगी के तासुरात नमूदार हो गए थे। अब क्या करें, ये तो हमें यहाँ से आसानी से नहीं जाने देंगे, डबंगर ने कहा। उसने जीप की रफ्तार कदरे कम कर दी थी। चेक पोस्ट पर मौजूद सिया फाम मुसल्ला फाद ने भी इनकी जीप देख ली थी। इस जीप को देखते ही वो अलर्ट हो गए थे और उन्होंने सड़क के दरमियान में आकर हाथों में पकड़ी हुई मशीन गनों से के रुख इनकी जीप की तरफ कर दिए थे। करना क्या है, हम इनके किसी सवाल का मुनासिब जवाब तो दे नहीं सकेंगे इससे पहले कि ये हम पर हमला करें। हम इन पर हमला करके रास्ता साफ करना पड़ेगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और साथ ही उसने अपना बैग जो उसने अपनी गोद में रखा हुआ था को खोला और इसमें से एक मिनी मिसाइल गन निकाल ली। तैयार हो जाओ तुम भी, मैं सड़क पर मौजूद ड्रमों पर मिसाइल फायर करता हूँ, तुम दाएं बाएं मौजूदा मुसल्लाफात को मिनी मिसाइलों से निशाना बनाओ, इमरान ने कहा। तो पीछे बैठे हुए कैप्टन शकील, जूलिया, सफदर और तनवीर ने भी अपनी बैगों से मिनी मिसाइल गने निकाल ली और फिर वो दो साइडों पर होकर बैठ गए। जूलिया और तनवीर दाएं साइड पर आ गए जबकि कैप्टन शकील और सफदर बाएं साइड पर। तुम अपनी तवज्जो जीप को कंट्रोल करने पर ही रखना, इमरान ने डबंगर से कहा। तो जवाब में डबंगर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के कहने पर उसने जीप की रफ्तार बढ़ाई ही थी कि सामने खड़े सिया फाम मशीन गने लहरा लहरा कर इन्हें जीप रोकने का इशारा करने लगे, लेकिन डबंगर ने जीप ना रोकी। जब जीप तेजी से सिया फामों की तरफ बढ़ी तो सिया फामों ने फौरन जीप की तरफ फायरिंग करने के लिए गने सीधी कर ली। इमरान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर वो अचानक सीट से उठकर उसने सड़क पर रखे हुए ड्रमों की तरफ देखते हुए मिनी मिसाइल गन का बटन प्रेस करना शुरू कर दिया। उसकी मिनी मिसाइल गन से एक बार दीगर दो मिसाइल निकले और बिजली किसी तेजी से सड़क पर रखे हुए ड्रमों की जानिब बढ़ते चले गए। क्योंकि ड्रमों के सामने सिया फाम की सियाफाम खड़े थे, उन्होंने जीप से दो मिसाइल फायर होकर अपनी तरफ आते देखे तो उन्होंने मिसाइलों से बचने के लिए फौरन दाएं बाएं दौड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर जूलिया, तनवीर और कैप्टन शकील और सफदर ने अपने अतरफ में मौजूदा सिया फाम मुसल्ला अफराद पर मिसाइल फायर कर दिए। इमरान की गन से निकले हुए मिसाइल सड़क के दरमियान में पड़े हुए ड्रमों से टकराए। एक बार दीगरे दो जोरदार धमाके हुए और ड्रम हवा में उड़ते नजर आए। इमरान के मिसाइल फायर करते ही इन चारों ने भी चूंकि एक साथ मिसाइल फायर किए थे इसलिए चार मिसाइल सड़क के दाएं बाएं भागते हुए सिया फाम मुसल्ला अफराद के करीब जाकर फटे और दूसरे लम्हे उनके टुकड़े उड़ते चले गए। इमरान के दो ही मिसाइलों ने काम कर दिखाया था। सड़क से ड्रम उड़कर सड़क के दाएं बाएं जा गिरे और जो मिसाइल इमरान के साथियों ने फायर किए थे उनसे वहां मौजूद तमाम मुसल्ला अफराद के पक्षे उड़ गए थे। रास्ता साफ होता देखकर डबंगर ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी और जीप बिजली किसी तेजी से चेक पोस्ट के करीब से गुजरती चली गई। आज ये सड़क एक और पहाड़ी मोड़ रही थी। दबंगर जीप की रफ्तार कम किए बगैर वो मोड़ मुड़ता चला गया। आगे सड़क मुतवाजे थी और दूर दूर तक खाली दिखाई दे रही थी, इसलिए दबंगर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए जीप की रफ्तार और तेज कर दी। ये चेक पोस्ट शायद जंगल की तरफ आने और जाने वाले अफराद को रोकने के लिए कायम की गई थी, ताकि गैर मुतलक अफराद न इस तरफ आ सके और न ही खुफिया तौर पर इस शहर से बाहर जा सके, दबंगर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जीप तेजी से दौड़ती रही और फिर दबंगर इन्हें लिए हुए एक छोटे से शहर में दाखिल हो गया। इस शहर में इमारतें पुख्ता और बड़ी बड़ी थी। शहर नहायत खूबसूरत था। वहाँ बड़े बड़े बागात और शहर के दरमियान से गुजरती हुई बड़ी और खूबसूरत शाहराह शहर के तरक्की याफ्ता होने का मुंह बोलती सबूत थी। शहर की इमारतें ज्यादा ऊंची नहीं थी। इस शहर में बनी हुई इमारतें सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी ही थी। वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहद शानदार था। शहर का सारा निज़ाम आम शहरों की ही तरह दिखाई दे रहा था। अलबत्ता शहर में नजर आने वाले लोग वाकई सियाफाम और एक से बढ़कर एक खतरनाक और बदमाश टाइप के दिखाई दे रहे थे। वहाँ नजर आने वाले तमाम सियाफामों के पास असला मौजूद था, जिन्हें वो सरेआम लिए फिर रहे थे। इस शहर में एक खास बात जो इमरान और उसके साथियों ने महसूस की थी वो ये थी कि वहाँ कोई बूढ़ा और बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ मर्द और जवान औरतें ही दिखाई दे रही थी और वहाँ नजर आने वाली सियाफाम औरतें भी मुसल्ला थी और इनकी शक्लें देखकर भी ऐसा लगता था जैसे वो भी इस बदमाश और क्रिमिनल सियाफामों के कलील की ही हों। शहर में ज्यादातर जीपें या फिर ऐसे मोटर बाइक दिखाई दे रहे थे जिन पर गांव बॉय जैसे सियाफाम मौजूद थे। इनके सरों पर फ्लैट हेड भी थे और इनके पहलुओं में होलिस्टर भी लटकते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनसे बड़े और भारी रिवॉल्वरों के दस्ते साफ दिखाई दे रहे थे और वो सब अपनी अपनी मगन में मस्त दिखाई दे रहे थे। दबंगर जीप मुख्तलिफ रास्तों से दौड़ाता हुआ शहर के दरमियानी हिस्से में आ गया जहाँ एक बड़ी इमारत थी। इस इमारत का गेट किसी बड़े महल के गेट जैसा दिखाई दे रहा था। गेट के बाहर कई सियाफाम जो मुसल्ला थे मुस्तद खड़े थे। इन सियाफामों ने गेट के साथ दीवारों के पास भी अपने मस्कन बना रखे थे। इनके हाथों में भारी मशीन गने थी और इनके गले और सीनों पर भारी मशीन गनों की गोलियों से भरी हुई बुलेट भी लगी हुई थी। ये कौन सी जगह है, इमरान ने पूछा। जीव इस तरफ आता देखकर सड़कों के दाएं बाएं मौजूदा मुसल्ला सियाफाम चौंक पड़े थे और इन सबकी नजरें इस जीप पर जमी हुई थी। इस सड़क पर इत्तेफाक से ऐसी ही जीवें दौड़ रही थी। इन जीवों में सिर्फ इतना फर्क था कि इमरान और इसके साथी जिस जीप में मौजूद थे इसमें इनकी तादाद 6 थी, जबकि उस सड़क पर दौड़ने वाली दूसरी जीवों में 2 से ज्यादा अफराद नहीं थे। ये होके शहर का किला है जिसे क्राइम फोर्ट कहा जाता है। इस फोर्ट में क्रिमिनल्स की एक अलग ही दुनिया आबाद है जहां हर किस्म के क्रिमिनल्स मौजूद हैं। अगर हमें ब्लैक शार्क तक पहुंचना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्राइम फोर्ट में दाखिल हों और यहां से ही अपनी मालूमात का आगाज करें। मुझे यकीन है कि हमें यहां से ब्लैक शार्क के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है, दबंगर ने जवाब दिया और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया क्योंकि कर्नल ग्वांग के ऑफिस से जो फाइल मिली थी इसमें भी कर्नल ग्वांग ने इसी क्राइम फोर्ट का जिक्र किया था कि ब्लैक शार्क की बार बार हाउनिश होने वाली कॉल्स इस इलाके में भी मात होती हैं। क्या हमें इस इलाके में आसानी से जाने दिया जाएगा, इमरान ने कहा। हम ब्लैक सिटी में दाखिल हो चुके हैं, अब हमें कहीं भी आने जाने से नहीं रोका जाएगा। अलबत्ता किले में दाखिल होने से पहले हमें अपनी शिनाख्त करानी पड़ेगी और इस किले की इंतजामिया को इनकी मुंह मांगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। किले में दाखिले की इजाज़त देने के लिए वो हम सबकी अलग अलग कीमत भी मांग सकते हैं, दबंगर ने जवाब दिया तो इमरान ने अजबात में सर हिला दिया। हम गेट के नज़दीक आ गए हैं, अगर आप कहें तो हम किले में चलते हैं वरना मैं जीप आगे बढ़ा ले जाता हूँ। दबंगर ने कहा, नहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर चलो, हम भी इस क्राइम कोर्ट की सैर करना चाहते हैं। इमरान ने कहा तो दबंगर ने अजबात में सर हिलाया और फिर वो जीप मोड़कर गेट की जानिब ले गया। जैसे ही वो गेट की तरफ मुड़ा, गेट के सामने मौजूद चार मुसल्ला अफराद तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने हाथ उठाकर इन्हें जीप रोकने का इशारा किया। आप इनसे बात करेंगे या मैं करूं? दबंगर ने आयतगी से पूछा। तुम यहाँ के असूल जानते हो इसलिए तुम बात करो, इमरान ने भी इसी अंदाज में कहा तो दबंगर ने इस बात में सर हिला दिया। दो मुसल्ला अफराद जीप के सामने खड़े हो गए जबकि दो अफराद इनके दाएं बाएं आ गए और इन्हें तेज नजरों से घूरने लगे। कहाँ से आए हो? एक सिया फाम ने कड़कते हुए पूछा। हम कांगा से आए हैं, दबंगर ने जवाब देते हुए कहा। कांगा के किस एरिए से? इस सिया फाम ने पूछा। कांगा के मगरबी किनारे पर एक सेटेड एरिया है डुमोशा, वहाँ योगल नामी एक क्लब है, हम इस क्लब के मेंबर हैं और हमारा ताल्लुक सुपर गैंग से है, दबंगर ने जवाब दिया। क्या तुम सब कार्ड होल्डर हो? सिया फाम ने पूछा। जाहिर है, कार्ड के बगैर हम इस शहर में कैसे दाखिल हो सकते थे, दबंगर ने जवाब दिया। क्राइम कोर्ट में क्या करने आए हो? सिया फामो ने सर झटक कर पूछा। हम क्राइम कोर्ट का नज़ारा करना चाहते हैं और हमारा क्राइम कोर्ट के गेम रूम में भी जाने का प्रोग्राम है, इसके अलावा हम किसी ग्रुप से स्पेशल डील भी करना चाहते हैं, दबंगर ने जवाब दिया। और इमरान समझ गया कि दबंगर का स्पेशल डील करने का क्या मतलब हो सकता है। ब्लैक सिटी में आने वाली स्पेशल डील या तो असली की हो सकती थी या फिर मंशियात की हो। यहाँ गेम रूम में जाने और स्पेशल डील करने के लगने के लिए रकम है तुम्हारे पास? सिया फामो ने इसे गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, मैं अपने साथ एग्रीमेंट बैंकों के गारंटेड चेक लाया हूँ। गेम रूम में जाने और डील करने के लिए मैं बड़े से बड़ा मुआवजा भी अदा कर सकता हूँ, दबंगर ने कहा। ओके, फोर्ट में जाने के लिए हम नगद मुआवजा लेंगे और तुम छह अफराद हो, हर फर्द के $10,000 होंगे, सिया फाम ने कहा। दस हजार ज्यादा हैं, हम यहाँ मुस्तकिल कारोबार का इरादा लेकर आए हैं, हर बार हमें क्राइम कोर्ट में दाखिल होने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ेगा, इसलिए हमारे साथ मुनासिब सलूक करो ताकि हम पर ज्यादा बोझ ना पड़ सके, दबंगर ने जैसे मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। तुम कितने दे सकते हो? सिया फामो ने जैसे बार्गेनिंग करने वाले अंदाज में कहा। छह अफराद हैं, हम सब तुम्हें $2,000 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, दबंगर ने कहा। $2,000 बेहद कम हैं, डबल करो तो हम तुम्हें फोर्ट में जाने देंगे वरना नहीं, सिया फाम ने कहा तो दबंगर ने जबड़े भींच कर यू इमरान की जानिब देखना शुरू कर दिया जैसे वो इससे इजाज़त लेना चाहता हो कि वो इस रकम पर मान जाए या इससे मजीद बार्गेनिंग करे। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए उसे डन करने का कह दिया और साथ ही उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और जब इसका हाथ बाहर आया तो इसके हाथ में भारी मालियत के डॉलर की बड़ी गड्डी थी। इसने गड्डी से गिनकर $24,000 अलग किए और दबंगर की जानिब बढ़ा दिए। डॉलर्स देखकर सिया फामो की आंखें चमक उठी थी। दबंगर ने इमरान से डॉलर लेकर इन्हें एक बार फिर गिना और फिर उसने डॉलर सिया फाम की जानिब बढ़ा दिए। सिया फाम ने इससे यूं डॉलर झपट लिए जिस तरह दरिंदे अपना शिकार पर झपटता है। डॉलर्स लेकर उसने गिने बगैर अपनी जेब में डाला और फिर वो फौरन जीप के पास से हट गया। उसने जीप के पास से हटते हुए जीप के इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सिया फामों को भी हटने का इशारा कर दिया और साथ ही उसने गेट के पास मौजूद मुसल्ला अफराद को भी दरवाज़ा खोलने का मखसूस इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही किले का दरवाज़ा खुलता चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दबंगर ने जीप आगे बढ़ा दी। सामने राहदारी थी जो दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। दबंगर जीप राहदारी में लाया और तेजी से आगे बढ़ता ले गया। जैसे ही वो किले में दाखिल हुए उनके पीछे किले का गेट बंद होता चला गया। किले में दाखिल होते ही उनकी आंखें फैल गईं। किला वाकई अंदर से किसी बड़े शहर की तरह सजा हुआ था। इस तरफ शीशे के बड़े बड़े हॉल बने हुए थे जहाँ रेस्टोरेंट भी थे और गेम रूम भी। किसी हॉल में शराब और शबाब की महफिलें जमी हुई दिखाई दे रही थी और कहीं मंशियात के धुएं के मरहोले उड़ रहे ते हुए दिखाई दे रहे थे। किले में तो जैसे मेला सा लगा हुआ था और वहाँ मौजूद जराइम पेशा अफराद को देखकर इमरान और उसके साथियों को वाकई इस बात पर यकीन करना पड़ा कि यह हकीकतन क्राइम फोर्ट ही है। किले के आखिरी सिरे पर चंद बड़ी इमारतें थीं जहाँ दफ्तरी सिस्टम था। ये दफातर शायद किले में होने वाले जराइम पेशा अफराद से मुतालिक थे या फिर इनकी आईमा पर ही किले में मंशियात और शराब और दूसरे जराइम का अर्तकाब किया जाता था। किला किसी बड़े शहर की तरह फैला हुआ था जहाँ हर तरफ छोटी बड़ी सड़कें बनी हुई दिखाई दे रही थी। किले के एक बड़े तहखाने में वसी कार पार्किंग बनाई गई थी जहाँ जमाने भर की गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही थी। दबंगर जी पार्किंग में ले गया। पार्किंग में बेशुमार सियाफाम मुसल्ला अफराद मौजूद थे। दबंगर ने जीप तहखाने से बाहर रोककर इन सबको वहीं उतार दिया और खुद जीप पार्किंग में ले गया था। थोड़ी देर में वो पार्किंग से बाहर आ गया। अब हमें यहाँ करना क्या है, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कदरे आहिस्ता आवाज में पूछा। सैरो तफरी, इमरान ने सादा से अंदाज में कहा। सैरो तफरी क्या मतलब, जूलिया ने हैरान होकर पूछा। हम दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे शहर और इस शहर के नवे या फिर दसवें अजूबे की सैर करने के लिए आए हैं जहां हमारे लिए सैर तफरी के बेशुमार मौके हैं। इन मौकों का हम भरपूर फायदा उठाएंगे, इमरान ने कहा तो जूलिया ने कुछ समझने और कुछ न समझाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है हमें यहां से मालूमात हासिल करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। रेस्टोरेंट के वेटर से हमें बहुत सी मालूमात मिल सकती हैं। हो सकता है इन मालूमात से हमें ब्लैक शार्क के बारे में कोई क्ल्यू मिल जाए। दबंगर ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। मालूमात हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया यहाँ के वेटर्स ही हो सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें किसी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। यहाँ मौजूद हर शख्स क्रिमिनल है और क्रिमिनल्स को मुट्ठी में लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस इनकी मुट्ठियाँ गर्म रखनी पड़ती हैं। दौलत के हुसूल के लिए ये एक दूसरे की गर्दनें भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ वाकई इनके लिए सब कुछ दौलत ही होती है, दौलत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दबंगर ने कहा। क्या तुम पहले क्राइम फोर्ट में आ चुके हो, इमरान ने पूछा। जी हाँ, कुछ अर्से कबल चंद दोस्तों के हमरा यहाँ आया था जो क्राइम फोर्ट में गेम खेलने के लिए आए थे, इसलिए तो मैं यहाँ के असूलों के बारे में इतना सब जानता हूँ, दबंगर ने अजबात में सर हिला कर कहा। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि क्राइम फोर्ट में ऐसे कौन से रेस्टोरेंट हैं जहाँ मौजूद वेटर्स ज़्यादा मालूमात रखते हैं और वो मालूमात फरोख भी कर सकते हो, इमरान ने कहा। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ मौजूद तमाम वेटर्स भी क्रिमिनल्स हैं और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी की भी जेब गर्म कर दी जाए तो इससे बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है, दबंगर ने जवाब दिया। तो इमरान ने अजबात में सर हिला दिया। क्या ख्याल है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाकर अलग अलग तौर पर इन वेटर से मालूमात हासिल की जाए या एक साथ ही रहकर किसी ऐसे वेटर की तलाश किया जाए जो क्राइम फोर्ट की सारी खबरें रखता हो, इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर पूछा। जैसा तुम मुनासिब समझो, कहो तो हम सब अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर मालूमात हासिल कर लेते हैं कहो तो एक साथ ही रहते हैं, जूलिया ने कहा। पार्ट 15 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब ब्लैक शार्क का बकिया हिस्सा पार्ट 16 में समाप्त फरमाएं।